नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के दीक्षांत समारोह में छात्रों को सम्मानित किया। दिल्ली नगर निगम एमसीडी ने संपत्ति कर निपटान योजना 2025-26 की समय सीमा 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाई। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के कारण वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना के तीसरे चरण ग्रैप 3 को लागू किया। और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने इंडिया गेट परिसर में 9 दिवसीय दिव्य कला मेला का आज किया उद्घाटन। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के दीक्षांत समारोह में छात्रों को सम्मानित और संबोधित किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि द्वारका स्थित यशोभूमि में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद भी उपस्थित थे।
श्री सक्सेना ने सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी और दीक्षांत समारोह के विषय सतत और समावेशी विकास के लिए इंजीनियरिंग शिक्षा पर अपना संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि सभी विकासात्मक और प्रगतिशील कार्यों में पारिस्थितिक स्थिरता के सर्वोच्च महत्व पर जोर देना चाहिए। उन्होंने जलवायु परिवर्तन, कार्बन उत्सर्जन और मरुस्थलीकरण से संबंधित संयुक्त राष्ट्र परिषद के लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की। उपराज्यपाल ने उपस्थित छात्रों से किया कि वे अपने पेशेवर भविष्य को इन्हीं लक्ष्यों के अनुरूप ढालें ताकि देश और विश्व का सतत तथा न्यायसंगत विकास सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यहां से उत्तीर्ण युवा अपनी प्रतिभा और परिश्रम से देश की प्रगति में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि नवाचार आज केवल विचार नहीं बल्कि नीति और प्राथमिकता बन चुका है।
ये डिग्री हमेशा आपके लिए यूजफुल है। ये पढ़ाई, ये एजुकेशन, ये नॉलेज हमेशा आपको हर फील्ड में काम आएगी और जहां जाएंगे अपने परिवार का, देश का, समाज का नाम रोशन करेंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं।
वहीं श्री सूद ने कहा कि भारत के प्रतिभाशाली इंजीनियर मानवता के लिए नवाचार करने, लाखों लोगों की सेवा करने वाले समाधान विकसित करने और ब्रांड इंडिया को वैश्विक स्तर पर चमकाने के लिए एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने बताया कि नवाचार की शुरुआत प्रयोगशाला में नहीं बल्कि साहस के एक क्षण में होती है। प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज कहा कि देश में न्याय व्यवस्था अब और अधिक नागरिक केंद्रित, सरल और संवेदनशील बन रही है। एक निजी समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून आज केवल व्यवस्था नहीं बल्कि भरोसे और सहजता का माध्यम बन रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार भी न्याय तक पहुंच को और अधिक सहज, मानवीय और भरोसेमंद बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने आज अपने विकासपुरी कार्यालय में जनता से विभिन्न विषयों पर बातचीत की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने बताया कि उन्होंने जनता द्वारा साझा की गई समस्याओं और सुझावों को सुना और उनके त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कला और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा आज भारत मंडपम में एक निजी सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि यहां प्रदर्शित शास्त्रों के माध्यम से मराठाओं ने विजय हासिल की थी। उन्होंने बताया कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से ये संदेश मिल रहा है कि ज्ञान और युद्ध परंपरा का इतिहास बहुत विशाल है।
ये शस्त्र हैं, शिवाजी महाराज जी के काल से जुड़े हुए शस्त्र हैं। भारत की जो शस्त्र परंपरा है, खासतौर पर जो मराठा शस्त्र परंपरा है, शिवाजी महाराज के शिव काल की जो शस्त्र परंपरा है, उसकी एक बहुत ही अद्भुत प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है और सभी लोग आकर यहाँ पर देखें। और मुझे लगता है कि भारत की जो ज्ञान परंपरा है, युद्ध कला है, उसका इतिहास बहुत ही विराट है, विशाल इतिहास है और उसके बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए। इन्हीं शस्त्रों के दम पर मुगलों को और अंग्रेजों को पराजित करने का पराक्रम भारत के योद्धाओं ने किया था, उनकी एक प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई।
शहरी विकास मंत्री आशीष सूद आज एक महिला सशक्तिकरण शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये पहल समाज के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए अवसरों को पैदा करने और अधिक प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दिल्ली पुलिस ने आज पांडव नगर स्थित मयूर विहार उपमंडल में जनसुनवाई का आयोजन किया। जनसुनवाई के दौरान पुलिस ने जनता की शिकायतों को सुना। इस दौरान मयूर विहार उपमंडल की सहायक पुलिस आयुक्त के साथ उपमंडल के सभी थानेदार मौजूद थे। दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस प्रकार की पहल पुलिस की पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और जन केंद्रित कार्रवाई के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने आज ट्रैफिक धोखाधड़ी और जबरन वसूली की एक गिरोह का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 31 लाख रुपए, 500 से अधिक अवैध स्टिकर, 6 मोबाइल फोन और करोड़ों रुपए के संपत्ति दस्तावेज बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की जांच अभी जारी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्र आज संसद में आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। एक रिपोर्ट।
13 दिसंबर 2001 को आज ही के दिन सुरक्षा कर्मियों ने संसद की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, जितेंद्र सिंह, किरेन रिजिजू तथा अर्जुन राम मेघवाल ने संसद भवन में शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी सहित कई अन्य सांसदों ने भी शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद हमले के बहादुर सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र उन नायकों के साहस, वीरता और बलिदान को नमन करता है जिनकी कर्तव्य निष्ठा भारत की राष्ट्रीय भावना को निरंतर मार्गदर्शन देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश सुरक्षा कर्मियों के सर्वोच्च बलिदान के लिए हमेशा कृतज्ञ रहेगा। प्रादेशिक समाचार के लिए विशाल शर्मा।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्र सदैव इन वीरों का ऋणी रहेगा और उनकी शौर्य गाथा आने वाली पीढ़ियों को देश के सम्मान और अखंडता के लिए सदैव समर्पित और प्रतिबद्ध रहने की प्रेरणा देती रहेगी। वहीं दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने संसद में हुए आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। श्री सिरसा ने कहा कि देश उनकी अदम्य वीरता और सर्वोच्च बलिदान का सदैव ऋणी रहेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि निजी क्षेत्र के नेतृत्व में नवाचार को सशक्त बनाने के लिए अनुसंधान, विकास और नवाचार कोष RDI फंड एक उत्प्रेरक है। नई दिल्ली में RDI फंड आउटरीच कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि निजी क्षेत्र के नवाचार के लिए सार्वजनिक वित्त पोषण की वैश्विक स्तर पर यह एक अनूठी पहल है। RDI फंड 1,00,000 करोड़ रुपए का ऋण 3% से भी कम ब्याज दर पर बिना कुछ गिरवी रखे या गारंटी के प्रदान करता है। श्री सिंह ने कहा कि ये फंड एक व्यापक राष्ट्रीय पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, क्वांटम प्रौद्योगिकी, साइबर भौतिक प्रणाली, चिकित्सा प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा, अंतरिक्ष और परमाणु क्षेत्रों के मिशन शामिल हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने इंडिया गेट परिसर में 9 दिवसीय दिव्या कला मेले का आज उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी उपस्थित रहीं। उन्होंने स्थल का दौरा किया और प्रदर्शकों से बातचीत की। एक रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री ने कहा कि तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी दिव्यांगजन पूरे साहस और निष्ठा से समाज में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी मदद करना सभी नागरिकों का कर्तव्य है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को ब्रेल किट, विशेष स्मार्टफोन और अन्य सहायक उपकरण प्रदान किए। उन्होंने दिल्ली के कई राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित हो रहा यह दिव्य कला मेला पिछले सभी संस्करणों से अधिक सफल होगा। दिव्य कला मेला दिव्यांगजनों को उनकी प्रतिभा दिखाने और अपने द्वारा निर्मित उत्पादों को बेचने का अवसर प्रदान कर रहा है। मेले में प्रवेश निःशुल्क है और यह 21 दिसंबर तक आगंतुकों के लिए खुला रहेगा। प्रादेशिक समाचार के लिए आदर्श।
दिल्ली नगर निगम एमसीडी ने संपत्ति कर निपटान योजना 2025-26 की समय सीमा 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 से पहले के बकाए कर पर ब्याज और जुर्माना से पूर्ण छूट के लिए वर्तमान वर्ष और पिछले 5 वर्षों का मूल कर जमा करना होगा। नगर निगम ने बताया कि लोग अब केवल 2% विलंब शुल्क के साथ कर निपटान कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि ये एक आसान और पारदर्शी प्रक्रिया है। एमसीडी ने लोगों से आग्रह किया कि समय पर कर जमा कर योजना का लाभ उठाएं और अतिरिक्त दंड देने से बचें। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने करदाताओं से अपने आयकर रिटर्न अपडेट करने तथा मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए डेटा का गैर हस्तक्षेपकारी उपयोग नज अभियान के अंतर्गत किसी भी गलत दावे को वापस लेने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
इस अभियान के अंतर्गत ऐसे करदाताओं को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल पर 12 दिसंबर से एसएमएस और ईमेल परामर्श जारी किए जा रहे हैं। सीबीडीटी ने करदाताओं को आयकर विभाग में उनकी फाइलिंग में सही मोबाइल और ईमेल आईडी सुनिश्चित करने की सलाह दी है ताकि वे किसी प्रकार के संपर्क से वंचित न रहें। स्वैच्छिक अनुपालन को सशक्त बनाने के लिए करदाता अनुकूल उपाय के रूप में पिछले महीने सीबीडीटी ने दूसरा मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए डेटा का गैर हस्तक्षेपकारी उपयोग नज अभियान का शुभारंभ किया था। कर कटौती प्रावधानों और अद्यतन रिटर्न दाखिल करने के संबंध में अतिरिक्त जानकारी www.incometax.gov.in पर उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं सर फिरोजी।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने तत्काल प्रभाव से श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना के तीसरे चरण ग्रैप 3 को लागू कर दिया है। ये निर्णय शहर में वायु गुणवत्ता सूचकांक के आज सुबह गंभीर श्रेणी को पार करने के बाद लिया गया है। ये क्षेत्र में पहले से लागू जीआरपी के पहले और दूसरे चरण के अंतर्गत की गई कार्रवाई के अतिरिक्त है। इन प्रतिबंधों में गैर जरूरी निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध शामिल है। इनमें मिट्टी का काम, ढेर लगाना, खाई खोदना और सड़क निर्माण की गतिविधियां तथा व्यापक स्तर पर मरम्मत का कार्य शामिल है। इसके अलावा दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS4 डीजल से चलने वाले हल्के वाणिज्यिक वाहनों को राजधानी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। इनमें वे वाहन शामिल नहीं है जो आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई या आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे हों। राजधानी में आज दिन के समय मौसम सामान्य रहा। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार कल सुबह हल्की धुंध छाए रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वहीं राजधानी में वायु गुणवत्ता आज खराब स्तर पर है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शाम 7 बजे तक दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 441 दर्ज किया गया, जो वायु की बहुत खराब स्थिति को दर्शाता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के दीक्षांत समारोह में छात्रों को सम्मानित किया। दिल्ली नगर निगम एमसीडी ने संपत्ति कर निपटान योजना 2025-26 की समय सीमा 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाई। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के कारण वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना के तीसरे चरण ग्रैप 3 को लागू किया। और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने इंडिया गेट परिसर में 9 दिवसीय दिव्या कला मेले का आज किया उद्घाटन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।